آداب، یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں گورنروں کی دو روزہ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے گورنروں سے کہا کہ وہ درج فہرست اور قبائلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی جامع ترقی کے لیے راہیں تجویز کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گورنروں پر زور دیا کہ وہ مرکز اور ریاست کے درمیان مؤثر وسیلے کا کردار نبھائیں۔ اتراکھنڈ میں اب تک 6,000 سے زیادہ پھنسے ہوئے یاتریوں اور عقیدت مندوں کو بچایا گیا ہے۔ ہماچل پردیش اور کیرالا کے مٹی کے تودے کھسکنے سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور تلاشی کی کارروائیاں زور شور سے جاری ہیں۔ ایئر انڈیا نے مشرقی ایشیا خطے میں کشیدگی کے تناظر میں تل ابیب کو جانے والی اور وہاں سے آنے والی سبھی پروازوں کو 8 اگست 2024 تک فوری طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیرس اولمپکس میں منو بھاکر 25 میٹر ایئر پسٹل کے فائنل مقابلے کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں۔ بھارت کے مردوں کی ہاکی ٹیم نے اپنے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں آسٹریلیا کو شکست دی۔ اور کرکٹ میں کولمبو میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں سری لنکا نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 231 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی کے راشٹرپتی بھون میں گورنروں کی دو روزہ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس کانفرنس میں کئی ایسے مسائل پر بات ہوگی جو نہ صرف مرکز ریاست تعلقات کا رخ طے کرنے بلکہ عام لوگوں کے لیے فلاحی اسکیموں کو فروغ دینے میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اپنے افتتاحی کلمات میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس کانفرنس کے ایجنڈے میں ان امور کو شامل کیا گیا ہے جو قومی اہداف کے حصول میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں ہونے والا تبادلہ خیال تمام شرکت کرنے والوں کے لیے اہم تجربہ ہوگا اور ان کو اپنے کام کاج میں بھی تعاون کریں گے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ فوجداری انصاف سے متعلق 3 نئے قوانین کے نفاذ کے ساتھ ہی ملک میں انصاف کے نظام کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ سرکار غریبوں، سرحدی علاقوں، حاشیے پر رہنے والے طبقوں اور علاقوں اور ترقی کے سفر میں پیچھے رہ جانے والوں کی ترقی کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ قبائلی آبادی کا ایک بڑا حصہ درج فہرست اور قبائلی علاقوں میں رہ رہی ہیں، انہوں نے گورنروں سے اپیل کی کہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی جامع ترقی کے حصول کی راہ تجویز کریں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے گورنروں کے لیے حلف کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ سماجی فلاحی اسکیموں اور پچھلی دہائی میں کی گئی زبردست ترقی کے بارے میں عوام کو مطلع کرنے کی اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں گورنروں سے اپیل کی کہ وہ مرکز اور ریاست کے درمیان مؤثر پل کا کردار نبھائیں اور لوگوں اور سماجی تنظیموں سے رابطہ کریں تاکہ حاشیے پر رہنے والے لوگوں کو بھی مرکزی دھارے میں شامل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کا عہدہ ایک اہم منصب ہے جو آئین کے فریم ورک کے تحت ریاست کے عوام اور خاص طور پر قبائلی خطوں کی فلاح و بہبود میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں زرعی اقتصادی ماہرین کی 32ویں بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وہ اس موقع پر ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ اس سال کی کانفرنس کا موضوع ہے پائیدار زرعی خوراک نظام کی طرف منتقلی۔ یہ کانفرنس عالمی زرعی چیلنجوں سے متعلق بھارت کے سرگرم نقطہ نظر اور زرعی تحقیق اور پالیسی کے عمل میں ملک کی ترقی کو اجاگر کرے گی۔ اس کانفرنس میں تقریباً 75 ملکوں کے لگ بھگ 1,000 مندوبین شرکت کریں گے۔ راجیہ سبھا میں آج ڈی ایم کے رکن ایم محمد عبداللہ کی طرف سے پیش کردہ ایک پرائیویٹ ممبر قرارداد پر بحث ہوئی، جس میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ قومی اہلیت اور داخلہ امتحان نیٹ اور امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی این ٹی اے کو منسوخ کرے اور ریاستی حکومتوں کے معیار کی بنیاد پر میڈیکل داخلوں کی طرف رجوع کرے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے ایوان کے رہنما اور مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے کہا کہ قومی اہلیت اور داخلہ امتحان نیٹ طبی تعلیم کے مختلف شعبوں میں داخلوں کے لیے ایک مضبوط اور انتہائی منظم نظام فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے اراکین سے اپیل کی کہ وہ اس نظام کو کمزور نہ کریں، کیونکہ نیٹ ایک بہت اچھا وسیلہ ہے جس کے ذریعے دیہات اور دور دراز علاقوں کے طلبہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کورسز میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب نڈا نے کہا کہ پہلے میڈیکل کی تعلیم ایک کھلا کاروبار بن چکا تھا۔ उन्होंने कहा कि पहले तलबा को मुतअद्दिद मेडिकल इम्तिहानात देने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी और इस पर बड़ी रकम खर्च होती थी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कोर्सेज के लिए सीटें मुख्तस करने के लिए काउंसिलिंग के अमल के दौरान भी वाजे तौर पर बदउनवानी होती थी। जनाब नड्डा ने ऐवान को मुत्तला किया कि फिलहाल 571 शहरों में नीट का इनेकाद किया जा रहा है, जो पहले 154 शहरों में मुनद होता था। इसमें 270% का इजाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि समाजी जुमरों के तलबा की तादाद में 65% इजाफा हुआ है, जो नीट के जरिए मेडिकल सीटें हासिल करते हैं। वजीर सेहत ने मजीद कहा कि अब यह इम्तिहान 13 जबानों में मुनद किया जाता है और सरकारी स्कूलों के तलबा भी इससे मुस्तफीद होते हैं। इससे पहले करारदाद पर बोलते हुए डीएमके के रुक मोहम्मद अब्दुल्ला ने नीट पेपर लीक का मामला उठाया। इस बहस में कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, एआईटीसी के जवाहर सरकार, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और सीपीआईएम के डॉ जॉन ब्रीता समेत दिगर मेंबरों ने भी हिस्सा लिया। ताहम ये बहस बेनतीजा रही। बाद में ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकज ने आज कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस साल 30 जून तक मुल्क में 34 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर ममलकत प्रताप राव जाधव ने कहा कि कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली, मगरबी बंगाल और ओडिशा को छोड़कर 33 रियासतों में ये स्कीम नाफिज है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 7,37,00,000 लोगों का अस्पताल में इंदराज हुआ है, जिस पर 1,00,000 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि स्कीम का मकसद हर एक कुंबे को हर साल 5,00,000 रूपये का सेहत कवर फराहम करना है। जनाब जाधव ने कहा कि अहल मुस्तफीदीन मुल्क भर में पैनल में शामिल 29,000 से ज्यादा अस्पतालों में कैशलेस सेहत खिदमात हासिल कर सकते हैं। बच्चों के लिए पीएम केयर्स स्कीम के तहत 4,532 बच्चे मुस्तफीद हुए हैं। इस स्कीम का मकसद उन बच्चों की जामे देखभाल और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है जिन्होंने कोविड-19 वबा की वजह से अपने वालिदैन या कानूनी तौर पर अपने निगहबान को खो दिया है। लोकसभा में आज एक तहरीरी जवाब में खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस स्कीम के तहत महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 855 बच्चे मुस्तफीद हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 467 और मध्य प्रदेश के 433 बच्चों को इसका फायदा हुआ है। साल 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7,28,00,000 इनकम टैक्स रिटर्न्स आईटीआर दाखिल किए गए हैं। वजारत खजाना ने एक बयान में बताया है कि ये साल 2023-24 के लिए दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की तादाद से 7.5% ज्यादा है। टैक्स दहिंदगान की बढ़ती तादाद ने नए टैक्स निजाम को चुना है। साल 2024-25 के लिए दाखिल किए गए मजमूई तौर पर 7,28,00,000 इनकम टैक्स रिटर्न में से 5,251,00,000 नए टैक्स निजाम के तहत दाखिल किए गए हैं, जबकि 2,01,00,000 टैक्स दहिंदगान ने पुराने टैक्स निजाम को अपनाया है। इस तरह 72% टैक्स दहिंदगान ने नए टैक्स निजाम को और 28% टैक्स दहिंदगान ने पुराने टैक्स निजाम को चुना है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मामला 31 जुलाई को उरूज पर रहा, जबकि एक ही दिन में 69,92,000 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए। वजारत खजाना के बयान के मुताबिक महकमे को 31 जुलाई तक पहली मरतबा इनकम टैक्स दहिंदगान की जानिब से 58,57,000 रिटर्न मौसूल हुए हैं, जो कि टैक्स के बढ़ते दायरे की निशानदेही करते हैं। इस दौरान टैक्स दहिंदगान की जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए हौसला अफजाई की गरज से सोशल मीडिया पर मरकूज बेदारी मुहिम चलाई गई। इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर मुनफरिद तख्लीकी नौयत की मुहिम भी चलाई गई। डिजिटल प्लेटफार्मों पर अंग्रेजी और हिंदी जबानों के अलावा 12 मकामी जबानों में मालूमाती वीडियोज भी जारी किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और यात्रा रूट पर फंसे हुए अकीदतमंदों को निकालने के लिए आज दूसरे दिन भी इमदादी और बचाव कार्रवाइयां जारी रहीं। अब तक 6,000 से ज्यादा अकीदतमंदों को बहिफाजत बचा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिनों के दौरान होने वाली मॉनसून की तेज बारिश और बादल फटने के वाकयात की वजह से लापता लोगों की तलाश के लिए इमदादी और बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। कुल्लू मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने के वाकयात में अब तक 6 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं जबकि 47 लोग अब भी लापता हैं। केरला में वायनाड में हुए मिट्टी के तोदे खिसकने के कई वाकयात में बचाव की कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। मंगल को हुए इस हादसे में अब तक तकरीबन 300 लोगों की जानें तल्फ हो चुकी हैं। मुसल्लह फौज की क्यादत में बचाव की कार्रवाइयों के चौथे दिन फौज ने पदावित्ती कुन्नू इलाके से 4 लोगों को निकाला है। इन लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया है जिनमें एक खातून और एक लड़की शामिल है। तलाश की कार्रवाई फिलहाल सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके चूरलमाला मूड काकाई अत्तामाला और चालियार नदी के साहिल पर जारी है। 40 टीमों पर मुश्तमिल 1500 बचाव कारकुन इसमें शामिल हैं। हुक्काम ने बताया है कि लापता लोगों को तलाश करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वायनाड में फिलहाल 9000 से ज्यादा लोग 91 रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। कर्नाटक के रियासती वजीर जंगलात ईश्वर कांदरे ने कहा है कि मगरबी घाटों में जंगलात की अराजी पर काबिज लोगों को खाली कराया जाएगा। आज बेंगलुरु में मुनाकिदा एक मीटिंग में वजीर मौसूफ ने अपने महकमे के आला अफसरान को हिदायत दी कि वह 2015 के बाद जंगलाती जमीनों पर तामीर होने वाली बस्तियों को खाली कराएं। वजीर मौसूफ ने अहकाम जारी किए कि एक महीने के अंदर अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए और इस सिलसिले में उनको एक रिपोर्ट भी पेश की जाए। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मगरबी घाटों और शोला जंगल के कई हिस्से कॉफी के बागात मकानात होम स्टे और रिजॉर्ट्स में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने निशानदेही की कि माहिरीन के मुताबिक गैर साइंसी तरक्की जंगलात और पहाड़ियों की कटाई पहाड़ी इलाकों में भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त और इन मकामात पर बड़ी तादाद में सयाहों का जमा होना मिट्टी के तोदे खिसकने की अहम वजूहात हैं। एयर इंडिया ने तेल अवीव को जाने वाली और वहां से आने वाली सभी परवाजों को 8 अगस्त 2024 तक फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इन परवाजों को मगरबी एशिया के मौजूदा हालात के तनाजुर में हिफाजती नुक्ते नजर का हवाला देते हुए मुअत्तल किया गया है। एयर इंडिया ने जोर देकर कहा है कि मुसाफिरों और अमले की हिफाजत उसकी अव्वलीन तरजीह है। इस मुद्दत के दौरान कन्फर्म बुकिंग वाले मुसाफिरों को रीशेड्यूलिंग और टिकट मनसूखी के जुर्माने पर मुकम्मल छूट की पेशकश की जाएगी। एयर इंडिया ने मजीद कहा कि वो सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर इत्तलात भी फराहम करेगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो रहा है जिससे हवाई सफर की हिफाजती सूरत हाल भी मुतासिर हो रही है। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय तीरंदाज अंकिता भगत और धीरज बोम्मा देवरा मिक्स टीम मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के तीरंदाजों को 5-3 से शिकस्त दी। शूटिंग में 2 ओलंपिक तमगा जीतने वाली मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से शिकस्त दी है। इसी दौरान भारत के लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपी के खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। खवातीन के प्लस 78 किलोग्राम जुमरे में जुडोका तुलिका क्यूबा की खिलाड़ी से हार गई हैं। भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान 3 एकरोजा मैचों की सीरीज के पहले मैच में 231 रन के निशाने को हासिल करते हुए खेलते हुए भारत ने कुछ देर पहले तक 40 ओवर्स में 6 विकेट पर 196 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने गवर्नरों से कहा कि वो दर्जफहरिस्त और कबायली इलाकों में रहने वाले लोगों की जामे तरक्की के लिए राह तजवीज करें। वजीर आजम ने मोदी ने गवर्नरों पर जोर दिया कि वो मरकज और रियासत के दरमियान मुअसर वसीले का किरदार निभाएं। उत्तराखंड में अब तक 6000 से ज्यादा फंसे हुए यात्रियों और अकीदतमंदों को बचाया गया है। हिमाचल प्रदेश और केरला के मुतासिरा इलाकों में राहत और तलाशी की कार्रवाइयां जोर शोर से जारी हैं। एयर इंडिया ने मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी के तनाजुर में तेल अवीव को जाने वाली और वहां से आने वाली सभी परवाजों को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।